नमस्कार, स्पोर्ट्स कैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना जी को। गिरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका।
क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और शतरंज सहित ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में शुरुआती झटकों से उबरने के बाद भारत की स्थिति मजबूत। मालविका बंसोड चाइना ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता और विश्व शतरंज चैंपियनशिप फाइनल चैलेंजर में भारतीय पुरुष और महिला टीम का विजयी अभियान जारी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। चेन्नई में भारत ने बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए थे। रिपोर्ट के साथ हैं विशाल शर्मा।
चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में घने बादलों के बीच बांग्लादेश ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर हराकर इतिहास रचने वाली बांग्लादेश टीम के हौसले बुलंद थे और वो यहाँ भी चौंकाने के इरादे से उतरे। मुकाबला शुरू हुआ और बांग्लादेशी गेंदबाज हावी हो गए। स्कोर बोर्ड पर 14 रन ही बने थे कि रोहित शर्मा 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
Very good bowling from Hassan Mahmood. It was a trial by fire and it's produced a wicket already.
युवा शुभमन गिल बिना खाता खोले हसन महमूद का दूसरा शिकार बने।
They all go up very confident. The finger's gone up as well. And Gill is walking.
टीम इंडिया दबाव में थी और अब सारी उम्मीदें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली पर अटकी। लेकिन हसन महमूद ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कोहली को सिर्फ 6 रन पर आउट कर टीम इंडिया को संकट में डाल दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने पारी संभाली और भोजनावकाश तक कोई और विकेट गिरने नहीं दिया। लंच के बाद आसमान में घिरे काले बादलों की तरह भारत पर संकट और गहराने लगा। कम अंतराल में लगातार विकेट गिरने से भारत का स्कोर 6 विकेट पर 144 रन हो गया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी 56 रन की पारी में कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए। इस समय टीम इंडिया बैकफुट पर थी और मेहमान टीम एक और चौंकाने वाले प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ काउंटर अटैक। भारतीय टीम के दो बॉलिंग ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। अश्विन ने 10 चौके और 2 छक्के की मदद से अपना 6ठा टेस्ट शतक पूरा किया। अश्विन 102 रन पर नॉट आउट है। जडेजा ने 21वां अर्धशतक लगाया, वो 86 रन पर नाबाद है। दोनों के बीच अब तक 195 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी है। हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। टी ब्रेक के समय मेहमान टीम ने भारत पर जो दबाव बनाया था, टीम इंडिया उस दबाव से बहुत हद तक अब बाहर आ गई है। मुश्किल परिस्थितियों में अश्विन और जडेजा की साझेदारी ने इस बात को सच कर दिखाया कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है। खेल के दूसरे दिन अगर चेन्नई में बादलों की आंख मिचौली जारी रही तो भारतीय पेस बैटरी बांग्लादेश के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैम।
अश्विन और जडेजा ने संभाल लिया, नहीं तो गिरीश ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की कहानी यहां भी दोहराने उतरी थी बांग्लादेशी टीम।
बिल्कुल, बहुत ही बुलंद इरादों के साथ बांग्लादेश की टीम भारत आई थी और वहां पर पाकिस्तान को उनको अपने घर पे हराने के बाद, और जो कि एक तरह से बहुत बड़ी बात, किसी को सब वो कम आंक रहे थे। और यहां भी ये हुआ था कि जब रोहित शर्मा के पास ये मौका था कि टॉस जीतकर पहले वो गेंदबाजी करे, जैसा कि रोहित ने खुद टॉस में बताया, हालांकि वो टॉस हारे, उनको बल्लेबाजी का न्योता दिया गया और उसके बाद भारत के एक के बाद एक बल्लेबाज जब आउट हुए, और आप जैसा कह रहे थे कि अश्विन, तो रवि और रवि, रविचंद अश्विन और
रविंद्र जडेजा
ने जो ये मैं कहूंगा कि लोकल चेन्नई बॉयज ही हैं एक तरह से, क्योंकि रवि अश्विन तो खैर चेन्नई के ही है और जडेजा जो है
चेन्नई
सुपर किंग्स के लिए काफी समय बिताते हैं। तो आप देखें वो कई तरह से, एक तरह से जो रेड सॉइल पे खेलने का पूरा जो ये बनाया गया था कि आने वाली जो 5 टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया में, उसको ध्यान में रखते हुए जो 5 मैचेस यहां भारत में होंगे, 2 ये और 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें से 3 सेंटर ऐसे हैं जहां पर रेड सॉइल पे पुणे मुंबई और ये चल रहा है। तो एक समय 144/6 का स्कोर, उसके बाद फिर इन्होंने 195 की नाबाद जो साझेदारी निभाई 227 गेंदों का सामना करते हुए। रवि अश्विन ने 102 नाबाद पारी खेली, उसमें 112 गेंदे ही हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक समय रन बॉल चल रहे थे, उसके बाद फिर भी उनका जो लय है वो रुका नहीं और भारत को एक बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में उबारा है। अब आनंद, जब आज का आप देखें पूरे दिन का खेल 80 ओवर ही पड़े, पहले 2 स्टेशन में बांग्लादेश ने जो धीमी गेंदबाजी की, तीसरे स्टेशन में स्पिनर्स को लगाया, लेकिन कल न्यू बॉल तैयार होगी। और खुद रवि अश्विन ने इंटरव्यू में कहा कि जब पहला 1 घंटा जो कल का होगा वहां पर पेस बॉलर्स को वो मदद मिलेगी और उस लिहाज से उनके लिए आके जो है ताबड़तोड़ शॉट लगाना वो मुश्किल होगा।
जी हाँ, मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मुश्किलों से निकाल लिया है अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने। देखना होगा कल दूसरे दिन किस तरीके से भारतीय पारी आगे बढ़ती है। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 255 रन बना लिए थे। डेरल मिचेल 41 और टॉम ब्लंडल 18 रन बनाकर क्रीज पर थे। न्यूजीलैंड के लिए टॉम लेथम ने 70 और केन विलियमसन ने 55 रन की पारी खेली। मेजबान श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 305 रन बनाए थे। नॉटिंगहम में इंग्लैंड ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने 316 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 315 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने 95 रन की शानदार पारी खेली। विल जैक्स ने 62 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जैम्पा ने 3 विकेट चटकाए। उधर महिला क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 143 रन बनाए। मैडी ग्रीन ने 35 और सूजी बेट्स ने 33 रन का योगदान दिया। जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 8 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए लिच पिचफील्ड ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रन की पारी खेली। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद मालविका बंसोड चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सिर्फ तीसरी भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कैसा रहा उनका सफर बता रही हैं सरफिरोजी।
चाइना ओपन बैडमिंटन में जब ड्रॉ घोषित हुआ तो शायद ही किसी भारतीय खेल प्रेमी को उनसे बड़ी उम्मीद बनी होगी, लेकिन मालविका ने तमाम कयासों को झुटलाते हुए अपने शानदार प्रदर्शन से आज एक नया इतिहास बनाया। हांगझोउ में उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में 2 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमर को कड़े मुकाबले में 21-17, 19-21, 21-16 से हराया। इस जीत के साथ ही मालविका साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। अब क्वार्टर फाइनल में मालविका का सामना 2 बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। बंसोड़ ने पहले दौर में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता ग्रेगेरिया मारिस्का तुंजुंग को सीधे गेम में हराया था। उम्मीद है कि वो अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए आगे भी अभूतपूर्व प्रदर्शन करने में सफल होंगी। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद भारतीय महिला बैडमिंटन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं।
गिरीश, बड़ी कामयाबी, और बैडमिंटन की पिछले कुछ वर्षों में जब भी चर्चा होती है तो बात होती है साइना की, बात होती है पीवी सिंधु की। वैसे अनमोल खरब, उन्नति हुडा जैसे नाम हैं, लेकिन ये एक ऐसी उपलब्धि है जिससे भविष्य में चमकता हुआ सितारा नजर आ रही मालविका।
बिल्कुल, इस रिपोर्ट में जैसा आप बता रहे थे कि आपकी टीम ने, कि शायद ही कोई भारतीय ने सोचा होगा कि मालविका बंसोड़। तो आनंद, पिछले साल दोहा में मैं एक इवेंट के दौरान था और उसी होटल में मालविका बंसूर अपने पिताजी के साथ सेम होटल में रुकी थी, और हालांकि वो किसी इवेंट में नहीं थी, वो ट्रेनिंग के लिए आई थी। तो मालविका बंसूर से मेरी मुलाकात हुई और तब पता चला कि कितना मेहनत वो करते हैं, और जो पिता और पुत्री की जो जोड़ी है, कोई कोचेज नहीं है
जी,
खुद पिता जो है वो कोच का रोल निभाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब साइडलाइंस पे जो है कोई कोच नहीं होता उनके साथ, तो साथ साथ खेल भी रही थी और खेलने के बाद, ट्रेनिंग के बाद वो अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही थी कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो मालविका बंसूर जिस हिसाब से उन्होंने सिर्फ चौंकाया नहीं है, बैक टू बैक ही, पहला ये हो सकता है कि आपने ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा दिया, फिर यहां पर कॉमन गेम में जो मेडलिस्ट है उनको हराया, लेकिन अब जो कल मुकाबला होगा उनका, जैसा कि रिपोर्ट में बताया अकाने यामागुची जो चौथी सीड है, तो इस साल 2023 में दुबई में एशिया चैंपियनशिप में ये आमने सामने थे, हालांकि अभी तक मालविका इनसे एक भी मुकाबला जीती नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है, जो पिछला मुकाबला था वो इनका 23-25 और 19-21 से हारी थी,
टफ फाइट।
तो इतना आसान नहीं होगा अकाने यामागुची से के साथ कि उनको एक तरफा जो है वो मुकाबला खेलने को मिले। काफी उन्होंने मेहनत की और वो दिख रहा था आज क्रिस्टी गिलमोर के मुकाबले में भी, एक तरफ वो पहले पीछे गई, फिर लगातार 10 पॉइंट लिया। फिर एक जो चीज मैंने देखी है उनकी, वो है डिसीजन लेने की क्षमता। जो बैकलाइन पे जब उनका शटल जब गिरता है तो कई बार उनको लगता है कि ये बाहर जा रहा है और वो उस पर वो काफी पॉइंट गंवाती है, तो वो एक डिसीजन मेकिंग उनको लेना पड़ेगा। रीच बहुत अच्छी है और कोर्ट के चारों तरफ अपने प्रतिद्वंदी को दौड़ाती है, तो मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी में आने वाले समय में भारतीय जो है इनका नाम बार बार सुनेंगे, जैसे पीवी सिंधु एक शिखर पे गई है, मालविका बंसूर से मुझे उतनी ही उम्मीद है।
चलिए, जैसा कि गिरीश कह रहे हैं कि डाउन द बेसलाइन जजमेंट एरर को सुधारेंगी, तो कल हो सकता है अकाने यामागुची के साथ एक और करिश्मा करने में वो सफल होंगी। पंजाब ने शूटआउट में उत्तर प्रदेश को 4-3 से हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। कड़े मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थीं, लेकिन शूटआउट में पंजाब ने बाजी मारी और खिताब अपने नाम किया। तीसरे स्थान के प्लेऑफ में हरियाणा ने कर्नाटक को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से मात दी। भारतीय सीनियर पुरुष हॉकी टीम का 2024 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद आज तड़के स्वदेश लौटने पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने मंगलवार को फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार ट्रॉफी हासिल की। हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में हरमनप्रीत सिंह ने इस जीत को बेहद खास बताया।
बहुत अच्छा लग रहा है बैक टू बैक इस टूर्नामेंट को जीतना, और बहुत स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि ओलंपिक के बाद बहुत ही कम समय में ये टूर्नामेंट था, और अपना माइंडसेट एंड इस टूर्नामेंट के लिए रेडी होना बहुत समय कम था हमारे लिए। बट आई थिंक जितने भी हमारे साथ टीम गई है, जो यंगस्टर्स भी गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखे तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और डेफिनेटली ये टूर्नामेंट हमें बूस्ट करेगा आने वाले मैचेस में, जितने भी हमारे इस साल के मैच हैं, तो आई थिंक आगे जाके बहुत हेल्प करेगा।
शतरंज की बात करें तो 45वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन के 7वें दौर में भारत ने तीसरी वरीयता प्राप्त चीन को हराकर पुरुष वर्ग में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। वहीं भारत ने महिला वर्ग में भी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है, जिसमें वैशाली रमेश बाबू और वंतिका अग्रवाल ने काले मोहरों से जीत हासिल कर टीम को जॉर्जिया की मजबूत टीम के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई। भारतीय टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अपनी मजबूती, नियंत्रित आक्रामकता और जरूरी जज्बा दिखाकर दबदबा बना दिया है। वो टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसी टीम है जिसने कोई भी मैच नहीं गंवाया है। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों के अंकों की संख्या 14 हो गई है और वो 7 राउंड के बाद शीर्ष पर बने हुए हैं। यहां भी उम्मीद है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन गिरीश, इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा के लिए अब समय नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
बस एक शब्द जोड़ूंगा कि 8वां राउंड जो है शुरुआत उसकी हो चुकी है। जो पुरुष वर्ग है वो ईरान के साथ खेल रहे हैं और महिला वर्ग वो पोलैंड के साथ खेल रही है।
इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद।
स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति, आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।